रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवे तिनके पदवंदन किए नासत विघ्न याने। कहने के लिए चार है परंतु एक मिल जाए तो चारों मिल जाएंगे, फिर चारपना नहीं रहेगा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु कहने में चार, तो इसमें एक चीज खास भक्ति मिल जाए तो भगवान और भक्त और संत महापुरुष सब सब उसके पेट में आ जाते हैं। कोई कहे कहां जा रहे हो कि भाई सोमाणी गेस्ट हाउस में जा रहे हैं, बस तो यहां सत्संग और छाया और मकान माइक और हवा सब मिल जाते हैं। क्योंकि इस गेस्ट हाउस में ये सब कार्यक्रम है। इसी प्रकार से भक्ति के अंदर ही भगवान, भक्ति में ही भगत, भक्ति में ही संत महापुरुष, भक्ति में ही सद्गुरुदेव, भक्ति में ही भक्ति सब है। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो भगवान के ऊंचे भक्त हुए उन्होंने कहा कि प्रभु हमें आपके दर्शन नहीं चाहिए, भले ही दर्शन मत दो, तो क्या चाहिए कि हमें सत्संग चाहिए। सुदामा जी को भगवान ने इतना धन दिया जितना उनके पास था ही नहीं। भगवान के महल में जो सामग्री नहीं थी उससे विचित्र सामग्री सुदामा जी को दी। सुदामा जी ने कहा ये क्या मेरे आफत कर दी महाराज, ये क्या आफत कर दी, मैंने कब आपसे धन मांगा, कब आपसे वैभव मांगा, कुछ मांगा ही नहीं मैंने, आफत कर दिया। यदि मैं मांगू और आप दो तो एक ही चीज है, आपके जो प्रेमी जन है भक्त लोग हैं उनका संग चाहिए। धन संपत्ति वैभव तो भाग्य में लिखी हुई होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो आप दे दोगे मेरे भाग्य में नहीं है, चली जाएगी। सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। राम कृपा बिनु सुलभन सोई, ये भाग्य से नहीं मिलता। कहते हैं ना कि बड़े भाग सत्संग जब पावा, तो बड़े भाग्य सी बात लिखी है तुलसीदास जी। तो वह भाग्य का अर्थ ये भाग्य नहीं है जिस भाग्य से अपने को संसार मिलता है, वह भाग्य का अर्थ यही है भगवान की कृपा। पुरुषार्थ से मिलने वाली भक्ति है, भगवान की कृपा से मिलने वाली भक्ति ये पुरुषार्थ साधन है। और संसार भाग्य साथी है। इसलिए भगवान ने कहा कि संसार की प्राप्ति तो तुम भाग्य पर छोड़ करके निश्चिंत हो जाओ और मेरी प्राप्ति के लिए तुम प्रयत्न करते रहो और मेरे से सहायता लेते रहो। जहां तुमको आफत लगे, कहीं कोई भक्ति में रुकावट मिले तो मेरे से सहायता लो, सहायता करने के लिए तैयार। तो नाभाजी महाराज अपने भक्तमाल में ऐसे ऐसे भक्तों को लाते हैं जिन्होंने संसार में रहते हुए सब व्यवहार करते हुए बाहर से कुछ भी परिवर्तन न करते हुए अंदर से सब कुछ बदल करके भगवान की भक्ति की। बाहर से कुछ नहीं बदला और अंदर से सब कुछ बदल दिया। कैसा होता है क्या कि अंदर से और बात और बाहर से अच्छा नहीं होता है? तो आज ये दुनिया में इतना कपट है, लेकिन कोई कपट वाला कहता है क्या कि मैं कपट करता हूं? चोरी करने वाला कहता है क्या कि मैंने चोरी की है, डाका डाला है? हत्या करने वाला बोल नहीं साहब कुछ नहीं किया, मैंने तो चोरी की। ऐसा बोलता है जैसे कोई बेचारा बड़ा निरपराध है। तो अंदर तो और बाहर और प्रदर्शित होता है ना। कोई कहीं जाता है, बातचीत होती है, अंदर कपट भरा पड़ा, ऊपर से ऐसे हंसेंगे। अंदर में क्रोध है तो क्रोध छिपा लेंगे, लोभ है तो लोभ छिपाएंगे और ऊपर से बड़ी निर्लोभता की बात करेंगे, बड़ी निष्कामता की बात करेंगे, बड़ी शांति की बात करेंगे। अंदर क्रोध है, राग है, द्वेष है। ये दुर्जन लोग ऐसा कर सकते हैं कि अंदर और बाहर और, फिर भगवान के भक्त क्यों नहीं कर सकते? तो वे ऐसे जो भगत होते हैं जो बाहर में संसार का पूरा व्यवहार करते हैं, भीतर से वे भगवान से जुड़े रहते हैं। कई भक्तों के बताते बताते अब वाल्मीकि जी का नाम आता है। वाल्मीकि जी, देखो आपको नई बात सुनने को मिलेगी। भगवान के दो वाल्मीकि जी भगत हुए। एक वाल्मीकि जी रामावतार में और एक वाल्मीकि जी कृष्णावतार में। नाम तो भाई किन्हीं दो व्यक्तियों का एक नाम हो सकता है? होता है नाम, बहुत लोगों का होता है। वो भी नाम इनका है, वही नाम हमारा है, वही नाम हमारा है, वही नाम इनका है। ऐसे रामावतार के वाल्मीकि जी अलग है, कृष्णावतार के वाल्मीकि जी अलग है। तो इस वाल्मीकि जी के पीछे प्रियादास जी जिन्होंने नाभाजी की भक्तमाल पर टीका लिखी है, वो कहते हैं जन्म पुनि जन्म कौन मेरे कछु सोचा हो, संत पद कंजरेनु शीश पर धारिये, पराचीन बर्रे आदि कथा पर सिद्ध जग उभे वाल्मीकि बात चित्त में नटारिये, भय भील संग भील ऋषि संग ऋषि भाई भय राम दर्शन लीला विस्तारिये, जिन जग गाय क्यों सिके न अघाय चाय, भाई भरी हियो भरी नैन भरी धारिये। के भगवान मैं बार बार संसार में जन्म मरण चाहता हूं। कहते हैं भगत लोग जन्म पुनि जन्म के न मेरे कछु सोच हो, मेरे कोई सोच नहीं, खूब जन्म दे, मेरे बार बार जन्म दे। अरे महाराज, दुनिया तो जन्म मरण से छुटकारा पाती है कि ना, मेरे को जन्म दे। शरीर पूरा हो गया, बुढ़ा हो गया, इसको बदलो, दोबारा मुझे जन्म दे। तो क्या करोगे? संत पद कंजरेनु शीश पर धारी, जन्म भी दे तो साथ में हमको संतों का संग दे ताकि उनकी चरण धूली सिर पर रखें। चरण धूली सिर पर रखे का अर्थ है कि उनके सामने नम्र होकर के रहे हैं। तो मुझे कोई चिंता नहीं है बार बार जन्म हो जाए। अब मैं आपको और ऋषियों में से वाल्मीकि उभे वाल्मीकि की बात चित्तन नटारी है। दोनों वाल्मीकि जी को जो कथा बताता हूं उसको आप चित्त लगा करके सुनिए, चित्त को इधर उधर मत लगाइए। पहले वाल्मीकि जो रामावतार में थे वो महर्षि वाल्मीकि हैं। बंगला की एक रामायण है, उस बंगला रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी का नाम था रत्नाकर। ये अंगिरा गोत्र में पैदा हुए थे, लेकिन छोटी अवस्था में ही घर से निकल गए। निकल करके और किरातों के साथ में हो गए, भील किरात इनके साथ हो गए, नीची जात वालों के साथ हो गए। अब इनको पता ही नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ऊंची जात का हूं, कुछ पता नहीं। छोटा बच्चा निकल गया घर से, किरातों के साथ रहने लगा। ऐसे करने से उसका ब्राह्मण पना था ना, वो नष्ट हो गया। संघ का ये असर होता है कुसंग का, ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। न कोई यज्ञोपवीत है, न कोई संध्या है, न गायत्री है, मंत्र कुछ नहीं, कुछ नहीं। दम कोल किरात की तरह रहने लगा। समय पर उसका विवाह हुआ, विवाह भी शूद्रा के साथ हो गया। भील किरातों में रहा तो भील किरातों में विवाह हो गया। जंगलों में रहना, शिकार करना और उसी से ही अपना काम चलाना, मारने में कोई दया नहीं आनी, कठोर स्वभाव। ब्राह्मण घर में शरीर जन्मा लेकिन स्वभाव कोल किरातों वाला ही बना लिया। कहते हैं उन्होंने इतने द्विजातियों को मारा कि 7.5 बैलगाड़ी जनेऊ की भर ले हुए, 7.5 बैलगाड़ी, इतने जनेऊधारियों को मार दिया। उन्होंने कोई दया नहीं, हया नहीं, कुछ नहीं। जैसे हम लोग देखो अपनी सभ्यता, देखो संतों की भाषा है, साग को भी काटना नहीं बोलते। तोरू है इसका साग है, इसको काटो काटो नहीं बोलते। घिया है साग बनाना, अभी इतना बड़ा घिया कैसे साग बनाएंगे, काटेंगे। काटना शब्द बोलते ही नहीं, क्या बोलते, अमनिया करेंगे, अमनिया। कठोर शब्द निकलते नहीं थे संतों के मुख से। तो इतना हृदय कठोर वाल्मीकि जी का कि 7.5 बैलगाड़ी भर जाए, इतने द्विजातियों को मार दिया, नहीं कोई मन में दया नहीं, कुछ नहीं। एक बार सप्तऋषि आए, सप्तऋषि कोई नारद जी की बोलते हैं, कोई किसकी बोलते हैं, एक सप्तऋषि आए, 7 ऋषि। वो सप्तऋषि है ना, सब जीवों के कर्म को देखते हैं। सप्तऋषियों को वहां दया आई, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। ऊंचे से जो आदमी नीचे जाता है उसको बहुत कष्ट भोगना पड़ता है, बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। जो नीचे से नीचा, जो पहले से ही नीचा और नीचा काम करता है उसको इतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता। क्यों, भागवत में आता न शयान पतत्यधय। सोया हुआ आदमी कोई नीचे थोड़ी गिरेगा, लेकिन कोई डागले पर छत पर है और खड़ा है और उसको नींद आ गई तो कितना नीचे गिरेगा, मर जाएगा। ऐसे ही ये वाल्मीकि ये मनुष्य जन्म खराब कर देगा तो बड़ा मुश्किल काम है। तब ये सप्तऋषि आए। सप्तऋषियों में पहले कश्यप जी, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, विश्वामित्र और जमदग्नि, ये सात ऋषि हैं। ये सात ऋषि आकाश मार्ग से आए। वाल्मीकि जी ने दूर से देख लिया, बड़े चमचमाते हुए, हमारे जैसे शरीर थोड़े ही होते उनके, बड़ा तेज पुंज। उन्होंने देखा कि ये खूब आभूषण पहने हुए, खूब धन होगा इनके पास। ए ठहरो ठहरो ठहरो, कहीं जाना नहीं, ये मेरा बाण है, कहीं चले जाओगे तो बाण तुम्हारी छाती में लग जाएगा। सप्तऋषियों को तो उद्धार करना था, सप्तऋषि खड़े हो गए। वो एक एक को यूं देखे, देखो यहीं से इनका जीवन बदला है, संत के दर्शन हो गए। सप्तऋषियों के दर्शन हुए ना, इन्हें दर्शन किया, कोई प्रणाम का अभिवादन कुछ नहीं, दर्शन। तुम्हारे पास कुछ है? है हमारे पास है तो देओ कि तुम ले, तुम लेने के लिए तैयार हो? कि मैं तो यही काम करता हूं, नहीं करते। तुम लेने के लिए तैयार हो तो हम तुमको देंगे। क्या मैं लेने के लिए तैयार हूं? अब देओ। तैयार नहीं, हमारे पास जो चीज है वो लेने के लिए तुम तैयार हो जाओ तो तुम्हारी ये दरिद्रता सदा के लिए मिट जाए। तो कोई मंत्र दोगे? बिल्कुल बढ़िया मंत्र देंगे। तुम ये पाप क्यों करते हो? कौन सा पाप? जीवों को मारते हो, ये कोई पाप है क्या? पाप क्या होता है? अब उस मूर्ख को क्या समझा है? उन्होंने कहा कि तेरा यदि कोई हाथ काट दे तो तेरे को अच्छा लगता है क्या? कि अच्छा नहीं लगता। तो जो व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगता है वो व्यवहार दूसरे के साथ करने पर वो पाप का नाम पड़ जाता है। वो व्यवहार दूसरे के साथ करोगे तो उसका नाम पाप है। तुम्हारा कोई हाथ काटे तुमको अच्छा नहीं लगता ना, तो तुम दूसरे का काटोगे तो बस ये इसका नाम पाप है। तुम दूसरे को मारते हो, कोई तुमको मार दे तो तुमको मारता अच्छा नहीं लगता ना, तो ये तुम दूसरों को मारते हो, ये व्यवहार पाप है। भाई यही पाप है क्या? हाँ यही पाप। तो महाराज इस पाप में तो मैं बहुत धन कमाता हूं, खूब पैसा भी कमाया, कब अच्छा खर्चा चलता है, तो मैंने जो पाप किया उस पाप में जो मेरे से पलते हैं उन सबको इसमें हिस्सेदारी मिलेगी, तो मेरे तो कोई ज्यादा पाप पल्ले नहीं आएगा, मेरी स्त्री भी है, मेरे बाल बच्चे भी हैं। दगा देख, पाप में हिस्सेदारी कब बनती है? जब पाप का कोई समर्थन करता है कि हाँ बड़ा अच्छा किया है, ऐसा ही करना चाहिए। तो तुम्हारी स्त्री समर्थन करती है क्या पाप में? कि मैंने पूछा नहीं। तुम्हारे लड़के कहते हैं क्या कि अच्छा है, पूछा नहीं। तो तुम उनको पूछ क्या? वो तुम्हारे पाप के अंदर हिस्सेदार होते हैं कि नहीं होते? पूछे। यदि वो हिस्सेदार होते हैं तो कोई बात नहीं, होते हैं तो फिर और आगे सोचेंगे। बोलो क्या बोलते? कहा कि देखो आप लोग बहुत चालाकी से बात करते हो, मैं मेरे घर जाऊंगा और पीछे से तुम चले जाओगे तो अच्छा। तुम क्या चाहते हो? मैं आपको सबको बांधना चाहता हूं, बांधो बांधो, हमको पेड़ों पर बांध सकते। तो सबको पेड़ों से बांध दिया और वाल्मीकि जी गए अपने घर पर। सबसे पूछा तो सबने जवाब दे दिया, कौ काहू को नहीं देखो ठोक बजाया, कोई किसी का नहीं है, ये मैंने ठोक बजा के देख लिया। वाल्मीकि जी बोलते हैं, देखो ठोक बजाए नारीपट भूषण चाहे, सुत सौखे नित प्राण सुतासीन प्रति अवगाहे, तात मात करे बैर बधु नित्य चित्त बिगारी, स्वार्थता के सजन दास दासी दे गारी, अगर काम हरि नाम सो संकट हो तो सहाय, कौ काहू को नहीं देखो ठोक बजाया। सब मतलब के हैं, ठोक बजा के देखे। खूब स्त्री से पूछा, मालकों से पूछा, उनका हम तो आपके पाप में बिल्कुल हिस्सा नहीं बटाएंगे। बच्चों ने कहा कि आप बच्चे थे तो आपके माता पिता ने पालन किया, और आप बुढ़े हो जाओगे तो हम आपका पालन करेंगे। स्त्री ने कहा कि मैं तो आपकी धर्म पत्नी कहलाती हूं, धर्म में मेरा हिस्सा है, पाप में तो मेरा हिस्सा होता ही नहीं। पुरुष पाप करता है वो पूरा पाप पुरुष को भोगना पड़ता है, स्त्री पाप करती है तो उसका आधा पाप उसके पति को भोगना पड़ता है। स्त्री धर्म करती है तो पूरा धर्म स्त्री को मिलता है, और पुरुष धर्म करता है तो उसका आधा हिस्सा पत्नी को मिलता है। तो मैं तो धर्म में हिस्सा रखने वाली हूं, धर्म पत्नी हूं मैं, मेरा धर्म मेरे पास, और आपका पाप पूरा का पूरा आपके पास। आपके धर्म में मेरा हिस्सा है और मेरे पाप में आपका हिस्सा है। वैराग्यों, महर्षि आए, सप्तर्षियों के चरणों में गिर गए, खूब रोए वो। सप्तर्षि का खूब रोलो पहले, खूब रो। देखो अच्छी बात के लिए जब रोना होता है वो रोना हृदय को बहुत शुद्ध करता है। रोना चाहिए, भगवान ने रोना दिया है और काम के लिए, हमने लगा दिया और काम के लिए। रोने से जितना ज्यादा भगवान की तरफ बढ़ना होता है, साधन भजन होता है, उतना किसी भी उपाय से मिलता, किसी भी उपाय से। रोना बहुत ऊंचा साधन, बहुत ऊंची चीज, परंतु वो रोना हमने गलत काम में लगा दिया। कोई मर गया तो रोते हैं, ये तो भगवान की इच्छा से मरा है, आयु पूरी हो गई इसलिए मरा है, सृष्टि का नियम है इसलिए मरा है, वियोग सच्चा है इसलिए मरा है। मरने के अंदर रोना होता है, ये रोना किस बात को लेकर के, स्वार्थ को लेकर के, और भगवान के लिए रोना होता है कि इतनी जिंदगी बीत गई, कुछ भी नहीं हुआ, कैसे पार पड़ेगी, कल प्रातःकाल भी होगा कि नहीं होगा, चल देंगे क्या होगा। युधिष्ठिर महाराज ने एक आदमी से कहा कि कल दान देंगे, अब जाओ, आज का समय पूरा हो गया, कल देंगे। भीमसेन गया नौबत खाने में, राजाओं के यहां नौबत खाना होता था, खूब नगारे वगैरह होते थे, कोई भी काम होता नगारे बजाते तो लोग सावधान रहते कि इतने मुझे नगारा किस बात का, कि इस बात का, इस बात का, इस बात का, लेकिन बिना समय जाकर के उन्होंने नौबत बजाई। युधिष्ठिर जी ने कहा भाई ये किसने बजाया, कि भीमसेन ने। भीमसेन को बुलाया, भीमसेन बिना समय किसकी नौबत बजाएगी महाराज, आज जैसा खुशी का दिन तो कभी मेरे जीवन में आया ही नहीं, आज कौन सी खुशी का दिन है भाई, आज क्या हुआ, इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मारा तो इतनी खुशी नहीं हुई, आपका राज्याभिषेक हुआ तो इतनी खुशी नहीं हुई जितनी आज खुशी। आज क्या हुआ ये तो पूछते हैं, महाराज आप सत्यवादी हो, धर्मराज हो, साक्षात धर्म के अवतार हो, आपके मुंह से कभी झूठी बात निकल नहीं सकती। आपने कल आपने कहा उस दान लेने वाले को अब कल आना, इसका मतलब कल तक तो आप जीवित रहोगे। ओह मेरे बड़े भाई का कल तो मिलना होगा ही। संतों ने तो कहा है क्या जानू क्या हो सांझ सवेरे प्रभात, प्रभात काल तक जाने क्या, बीच में एक रात पड़ी है पूरी 8-10 घंटों की, पूरी रात पड़ी है, इतनी लंबा समय है। लेकिन आपने कहा कि कल तू दान ले जाना, कल तेरे को दान देंगे तो आप रहोगे तब ना कल तक, तो इसलिए मेरे आप जीवित रहोगे इससे बढ़कर मेरे लिए क्या खुशी है। मुझे लगा आप काल जयी हो, काल को जीतने वाले हो। युधिष्ठिर महाराज चुप हो गए कि ऐसा आदमी को बोलना नहीं चाहिए, आज ऐसा शब्द निकल गया। मनुष्य को हरदम अंदर से डरना चाहिए और निर्भय भी रहना चाहिए। निर्भय रहो और डरते भी रहो। हर डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार। तीन चीज में डरो, हर डर भगवान का डर रखो, अपने से बड़े आदमी हूं क्या कहेंगे, माता पिता गुरुजन संतजन शास्त्र क्या कहेंगे, इसलिए उससे डरो। हर डर गुरु डर और जगत डर और लोग क्या कहेंगे। लोकापवाद एक बहुत बढ़िया मनुष्य को बचाने का कवच है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। आदमी इससे स्वेच्छाचारी नहीं होता, वो आदमी अपने आप का संयम कर सकता है। अभी हम पैंट पतलून पहन ले, बुशर्ट पहन ले तो सारी दुनिया हंसेगी, चर्चा होगी, और आप हमारे जैसा कपड़ा पहन लो तो आपकी चर्चा हो जाएगी। अरे यू कहीं करियो, लाल कपड़ा कर लिया कहीं करियो, तो आपको अपनी मर्यादा में रहने के लिए और हमको हमारी मर्यादा में रहने के लिए लोकापवाद बहुत बड़ा रक्षक होता है। हर डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार। रज्जब डरिया सो उबरिया और गाफिल खाई मार, खाइए लोग कहता रही हूं कहीं बस मैं मार खाई गया। तो बहुत रोए बहुत रोए वाल्मीकि जी, खूब रोए। तो उन्होंने कहा कि भाई अब क्या चाहते हो तुम। कहते महाराज मेरा कल्याण तो हो सकता है ना, कि हो सकता है कि इस जन्म में हो सकता है क्या, इस जन्म में हो सकता है कि महाराज इस जन्म में इतना मैंने पाप किया, इतना पाप किया है, कौन सा पाप नहीं किया वो पाप किया है, ब्राह्मण घर में जन्म लेकर मैंने ये किया है, कितना नीचा उतर गया। इस जन्म मेरा कल्याण हो सकता है कि इस जन्म में तेरा कल्याण हो सकता है, कैसे। तो उन्होंने कहा कि तू मरा मरा बोल दे, मरा 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 बोलता रहे, तो मरा मरा तो बोलता ही है, वो मरा वो मरा वो मरा, रुक रुक करके बोलता था, उसको एक साथ बोलने लग जा मरा 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 मरा, बस तू मरा मरा बोलता रहे, मरा मरा बोल दे। अध्यात्म रामायण में स्वयं वाल्मीकि जी ने कहा है भगवान से कि महाराज मैं मरा मरा बोलता, एकाग्र मन साथ रही, वह मरे थी जप सर्वदा। मेरे को उन्होंने कहा कि तू मरा बोल दे मरा। एक संतों ने कहा कि भाई हमारे साथ आप लोग कीर्तन करोगे कि करेंगे मरा, तो हम बोलेंगे वैसा बोलेंगे कि बोलेंगे। तब कहा कि ये कीर्तन ये मजीरा है ना, मजीरा क्या मजीरा, इस मजीरे का ही नाम लो, मजीरा 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 बोले राम जी राम जी नाम आ गया। मजीरा 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 मजी, संतों ने सुनाया, वहीं बैठे थे हम सब। उनका कि भाई कीर्तन करो कीर्तन करो। हमने भी सोचा मजीरा मजीरा क्या करेंगे, तो वो खुद हाथ में मजीरा ले लिया। मजीरा 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 मजी राम जी राम जी हो गया। ऐसे कि मरा 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 हो गए। फिर कहा कि ऐसा कहकर वे चले गए, तो 1000 युग बीत गया। 1000 युग ब्रह्मा जी का एक दिन उसके बाद आए तो मैं उस समय यूं बैठा हुआ था, मेरे शरीर को कीड़िये खाए और खाए, दीमक सी लग गई, लेकिन मेरे से मरा मरा नहीं छूटा। इतना आनंद आया मुझे, इतना आनंद आया, मरा 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 बोल। तब वे आए कि आइए वाल्मीकि नाम पड़ा भी मेरा, वाल्मीकि बल्मीकि बल्मीक कहते हैं दीमक, दीमक में से पैदा हुआ। उन्होंने छाटा लगाया, क्या मेरा सुंदर कलेवर हो गया, और मेरे यज्ञोपवीत स्वतः यज्ञोपवीत आ गए, ब्राह्मणों की तरह मेरे चोटी मेरा एकदम स्वरूप ब्राह्मण का बन गया। अलग से मुझे कोई प्रायश्चित भी नहीं करना पड़ा, ब्राह्मण होकर के जो ब्राह्मणपन से गिर जाए उसको अलग से प्रायश्चित करना पड़ता है। मनुस्मृति में तो आता है आशुर सात ब्राह्मण से सावित्री नाति वर्तते, ब्राह्मण को चाहिए बच्चे को 12-13 वर्ष का हो जनेऊ दिला दो, 16 वर्ष तक भी यदि दिला दोगे तो सावित्री का अतिक्रमण नहीं होगा, और उसके बाद यदि होता है तो फिर उसका एक प्रायश्चित अनुष्ठान होता है छोटा सा, वो करो उसके बाद जनेऊ ले सकते हैं। हर प्रकार की छूट है शास्त्रों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनके लिए अलग अलग प्रायश्चित बताए, उनको कोई प्रायश्चित नहीं करना पड़ा। तो उन सप्तऋषियों ने कहा कि जो एक भगवान का नाम स्मरण कर लेता है उसका कहीं किसी प्रकार से नया प्रायश्चित नहीं करना पड़े और कोई नया अनुष्ठान नहीं करना पड़े और किसी प्रकार से उसको व्रत उपवास करना न पड़े। अपने को तुमने यज्ञोपवीत तुम्हारे शरीर में स्वतः ही आ गई, यज्ञोपवीत कैसे आ गई, आ गई नाम के प्रभाव से। तो ये वाल्मीकि जी महाराज थे, इनके लिए ऐसा भी आता है कि ये पिछले जन्म में व्याध थे शिकारी, तो जंगल में जा रहे थे तो एक शंख नाम का ऋषि था, शंख भयंकर गर्मी पड़ रही थी, छत्ता था जूता उनका पहना हुआ, तो ये शिकारी ने क्या किया कि देखो मैं तो नग्गे पैर दौड़ता हूं और इनके पास में जूता है, मैं तो देखो धूप में इधर उधर दौड़ता हूं इनके पास छत्ता है। तो शिकारी था बलवान, ऋषि थे बिचारे दुबले पतले, छत्ता भी खोस लिया जूता भी खोस लिया। आया तेरे को ही गर्मी लगती है, तेरे को ही जमीन कांटे वाली लगती है, हमको नहीं लगती, छीन लिया। बिचारे ऋषि क्या बोले, अब वो थोड़ी दूर गए, ऋषि तो पसीने से तरबतर हो गए, पैरों में छाले पड़ गए। उसने देखा कि बेचारे का मुंह उदास हो गया, शिकारी ने देखा इसका बेचारे का मुंह उदास हो गया और चलने में बड़ी कठिनाई हो रही है, कैसे पैर रख रहा है। मैं तो भाई जन्म से ही ऐसा ही हूं, कठोर पैर वाला हूं, ऐसी गर्मी को तुम्हें बहुत सहन किया हुआ हूं। ये बेचारा, ए ऋषि इधर आओ, ले जाओ तेरा छत्ता जूता ले जाओ, तुमको कष्ट पाते देखा तो हमारा हृदय पसीस गया, दया में भर गया, ले जाओ तुम्हारा छत्ता ले जाओ। ऋषि ने कहा मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूं, तुझे अच्छे संत मिलेंगे और उन संतों की कृपा से तेरा ये सारा पाप छूट जाएगा, क्योंकि मुझे संतों की जरूरत ही नहीं है, तुझे तो जरूरत नहीं है, परंतु मैंने जो वरदान दे दिया है इसे तेरे को संत मिलेंगे ही, तो संत मिल ही गए। कोई कहते इस कारण से ही आया, ऐसी ऐसी बातें हैं। ये वाल्मीकि जी महाराज एक बार सरस्वती नदी के तमसा नदी के किनारे अयोध्या के पास तमसा नदी के किनारे बैठे हुए थे, तो वहां पर एक पक्षी का जोड़ा था, उस जोड़े को देखकर शिकारी ने बाण छोड़ दिया और वो पक्षी बेचारा चिल्ला जमीन पर गिर गया और मर गया। अब किया तो काम किसी शिकारी ने और अंदर से दया आई बाल्मीकि, हृदय रो पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधी काम मोहितम। तूने इन पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया, तुझे इस संसार में कहीं शांति नहीं मिलेगी, ऐसी भटकता फिरेगा। तो ये मतलब भीतर का एक भाव था, वो भाव उनका निकला तो 32 अक्षरों में निकला है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधी काम मोहि, अपना आप ही निकला है। इतने में ब्रह्मा जी आए, अरे वाल्मीकि जी तुम अपने भावों को तो खूब गागा करके बोल सकते हो, राम जी का चरित्र लिखो ना, जिस छंद में तुमने ये गाया है उस छंद में तुम राम जी का चरित्र लिखो। तब नारद जी आए, नारद जी ने आकर पूरी रामायण सुनाई, ऐसे दशरथ जी की बेटा ऐसे वो है। सुनने के बाद उन्होंने उसको धारण किया, धारण किया माने पूरी रामलीला का ध्यान किया, ध्यान किया, धारण किया, पूरी जच गई। अब वो लिखने लगे, अपने आप ही रामायण निकले उनके अपने आप, पूरी वाल्मीकि रामायण। उससे पहले रामायण थी नहीं, उससे पहले श्लोक नाम की चीजें होती नहीं थी। सारे संस्कृत साहित्य का आदि श्लोक वाल्मीकि जी का, मां निषाद प्रतिष्ठाम, ये श्लोक बना। वेद के मंत्र तो थे, पर वेद के मंत्र हैं वो इस छंद के अंदर नहीं, वो अपने हिसाब से अलग है। वेदों के मंत्रों में सब में एक जैसे अक्षर नहीं आते, यहां चार पद होते हैं और बड़ा कायदे से होता है। तो ये रामायण वाल्मीकि रामायण इन्होंने राम जी के अवतार से 10,000 वर्ष पहले लिख दी। 10,000 वर्ष के बाद राम जी का अवतार हुआ। कहते हैं कि राम जी का अवतार बाद में रामायण पहले ही लिख दी कि राम अनादि अवध पति सोई, भगवान का कोई एक बार अवतार थोड़ा ही होता है। अब की बार जो त्रेता युग हुआ उस त्रेता युग में 10,000 वर्ष पहले वाल्मीकि जी ने लिख दी, वो पिछले त्रेताओं के रामायण को लिखा है। राम जी तो एक ही है, सीता जी भी वही है, लक्ष्मण जी भी वही है, भरत जी भी वही है, दशरथ जी भी वही है, कौशल्या जी भी वही है, रावण भी वही है, खास खास पात्र तो वही है। थोड़ा थोड़ा रामायण में और में अंतर आता है, कथाओं में कहीं भी अंतर आता है, तो वो कल्प भेद हरिचरित्र सुहाए। महाभारत को एक बार ही थोड़ा ही हुआ है, कृष्ण भगवान का अवतार एक बार थोड़ा ही हुआ है। कभी कभी लोग हमारे अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग लीलाएं देखकर सोचते हैं कि भाई ये लीला इसमें आई है, उसमें तो नहीं आई, वो सच्ची कौन सी है, सच्ची कौन सी है। भगवान वही है, पर लीलाओं में फर्क क्यों आया? फर्क इसलिए आया कि भगवान की लीला एक बार नहीं अनेकों बार हुई है, अनेकों बार में एक बार में ऐसी लीला हो गई, एक बार में ऐसी लीला हो गई, इसलिए लीलाओं में संदेह नहीं करना चाहिए। कहते हैं भागवत सुनते हैं तो उसमें तो आता है कि द्रौपदी के पास छोटे छोटे बच्चे थे, द्रौपदी के अश्वत्थामा ने उनको मार लिया, मार करके उनकी खोपड़ियों को आपस में चोटी से जोड़ करके और जैसे नारियल आपस में जोड़ते हैं ऐसे ले जाकर के दुर्योधन को दिया। लेकिन माँ भारत में ऐसा नहीं आता है, वहां तो द्रौपदी के पुत्र बहुत बड़े बड़े थे, युद्ध करने में समर्थ थे, महारथी थे, उनको युद्ध करते हुए मारा है, माने रात्रि के अंदर उनसे युद्ध किया और फिर मारा है अश्वत्थामा ने। लेकिन भागवत में ऐसा नहीं आता, ये क्या ये कल्प भेद से चरित्र अलग अलग हो गए। अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए कि भाई इसमें तो ये लिखा और इसमें ऐसा लिखा है। अब पुष्पवाटिका का प्रसंग आप देख लो, केवल गोस्वामी जी की वाणी में है, और जगह नहीं, और रामायण में नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी की रामचरितमानस में ही कथा आती है कि जनक जी भी चित्रकूट गए, किसी रामायण में नहीं आती, किसी भी रामायण में। अब कभी आप वाल्मीकि रामायण सुनेंगे तो कहेंगे कि भाई इसमें तो जनक जी आए ही नहीं, पुत्री पवित्र के कुल दौ वाली बात ही नहीं है। जनक जी ने क्या रामचरितमानस में भरत चरित्र सुनाया है, यहाँ तो आए ही नहीं, क्या बात। अब ये सच्ची है, ये सच्ची है, कोई झूठी नहीं। नाना भांति राम अवतार, नाना भांति राम अवतार। गोस्वामी जी ने ऐसी शंकाओं का पहले से ही समाधान कर दिया। वनवास के समय में भगवान राम वाल्मीकि जी से ही पूछते हैं कि मैं रहूं कहां, कहां रहूं बताओ। तो उन्होंने कहा कि आप कहां नहीं हो वो पहले आप जगह बताओ, वहां हम आपको रख दें। तो चुप हो गए भगवान। फिर कहा कि चित्रकूट चले जाओ, चित्रकूट पर चले गए। बस वाल्मीकि जी का इतना ही वर्णन आता है तुलसीदास जी से। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अंदर सीता जी का जब त्याग होता है तो सीता जी को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ के आते हैं लक्ष्मण जी, पूरे आश्रम के अंदर नहीं, आश्रम के बाहर दूर छोड़ दिया वाल्मीकि जी के आश्रम में। वहीं पर सीता जी रही, लव कुश का वहीं जन्म हुआ। वाल्मीकि जी ने ही लव कुश को रामायण सुनाई और वो सब रामायण सुन करके और ये बहुत बढ़िया रामायण गाने लग गए लव और कुश। फिर वाल्मीकि जी ने कहा कि बेटा तुम दोनों रामायण गाते गाते अयोध्या चले जाओ, तुमको कोई किसी प्रकार से कुछ भी वस्तु देवे तुम वस्तु मत लेना, केवल रामायण गाते रहना। तो अयोध्या की गलियों के अंदर इतने सुंदर बालक रामायण गाते थे तो लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाता, खूब बड़े प्रेम से रामायण सुनते। अंतर्यामी भगवान सर्वज्ञ भगवान अपने महल से देख लिए कि वो लव और खुशी है, प्रकट करके किसी को कुछ नहीं कहा, सेवकों को भेजा कि उन ऋषि बालकों को बुलाओ देखे। बुलाया और कहा कि तुम क्या बोलते हो कि हम राम कथा सुनाते हैं। राम कथा सुनाते हो, ये राम कथा किसने लिखी है? ये हमारे गुरुदेव वाल्मीकि जी ने लिखी है, तो हमको भी सुनाओ। तो बैठ जाओ सब। आगे आगे मुख्य श्रोता भगवान वाल्मीकि रामायण के, पास में बैठे भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न ये बैठे, सीता जी भी बैठी, सीता जी तो थी नहीं, वो सब बैठे खूब बड़े प्रेम से रामायण सुन रहे हैं। तो जब जन्म की बात आई तो राम जी ने भरत से कहा कि देखो भरत, क्या एकदम यथार्थ वर्णन हो रहा है, विवाह का वर्णन हुआ, चित्रकूट का वर्णन हुआ। तो भरत जी तो उस समय मुंह उठा के देखे, रोने ही रोने लग गए। राम जी के भरत 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 को तो होश ही नहीं। चित्रकूट के प्रसंग के बाद जब पंचवटी का प्रसंग आया और रावण सीता को लेगा, भरत जी उस समय खड़े हो गए। राम जी ने कहा भरत बैठो, कथा सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठ बैठ बैठ। इतनी संजीदगी के साथ कथा सुनाई और सुनी। कथा सुनते हुए ऐसा लग रहा था कि मानो ये हमारे सामने हो रहा है, अंदर का जो मन था वो कथा के उस कथा में चला गया, कथा में ही, पता ही नहीं चला कि हम अयोध्या के महल में बैठे हुए। भरत जी खड़े हो गए, रावण की ये हिम्मत हमारी माता सीता को ले जाए, खड़े हो गए, क्रोध में भर गए भरत जी, क्रोध में। राम जी हाथ पकड़ कर कथा सुन रहे, कथा युद्ध की बात आई तो बस पूछो ही मत। भरत जी लक्ष्मण जी सब लीला में शामिल थे ही, इसलिए लक्ष्मण जी को तो ऐसा नहीं, भरत जी को बड़ा विचार है। पूरी कथा सुन ली, सीता जी के त्याग की भी कथा सुनी। पूरी कथा सुनने के बाद राम जी ने भरत से कहा, भरत तुम्हारी जितनी इच्छा हो ना उतनी कोठरियों के अंदर सोने की मोहरें भर करके बच्चों को दे दो, तुम्हारी जितनी इच्छा हो। तो भरत जी ने देखा कि इतनी ज्यादा भी दे देंगे इनसे उठे ही नहीं तो ठीक नहीं है, बच्चे आराम से उठा सके ऐसी कोठरी भर दी सोने की मोहरों से। आपने कथा सुनाई ये हम आपको सोने की मोहरें देते हैं, तो लव कुश बिगड़ गए। लव और कुश राम जी पर ऐसे बिगड़े, हमको आपने ऐसा समझ रखा है, हम ऋषि वाल्मीकि के यहां पढ़े हुए हैं, वो हमारे गुरु हैं, उनसे हमने ये शिक्षा थोड़े ही ली है, हम राजाओं के यहां इसलिए थोड़े ही जाते हैं कि वो हमको कुछ दान पुण्य दे, वो भी सोना हम लेंगे। ऐसे बोले ऐसे बोले, उस समय भरत जी के मन में बार बार आएगी इनका लटका, इनकी सकल सूरत और शरीर के अवयव पूरे राम जी से मिलते हैं, और राम जी को भी देखें, लव कुश को भी देखें, राम जी को भी देखें, लव कुश को भी देखें। भगवान ने ऐसा भरत जी को मोहित किया, देख ऋषि कुमारों में कितना त्याग है, कितनी अच्छी इनको शिक्षा दी है, प्रारंभिक अवस्था में इनके अंदर इतना वैराग्य है। ऐसे राम जी भरत जी को यूं समझाए, भरत जी राम जी को देखे, उनको देखे, लगते तो एक जैसे। फिर भगवान फिर चले गए, लिया कुछ नहीं। फिर अंत में भगवान ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के अंदर सोने की सीता बनाई गई थी। सब ऋषि मुनियों को बुलाया गया। उस समय वाल्मीकि जी महाराज सीता जी को लेकर आए। राम वाल्मीकि जी के पास समाचार गया। वाल्मीकि जी ने कहा कि कल हम सीता को लेकर आएंगे सभा में। सारी अयोध्या की नगरी यूं चारों तरफ देश देशांतर के राजा सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब सीता कैसे आएगी, कैसे देगी। सीता आएगी, बाप के साथ में जैसे बेटी आती है। नीचा मुखी और यूं नीचा मुखी टाप टाप आंसू गिर रहे। लव और कुश इनके साथ चल रहे। मां को देख दे, मार होती क्यों है। बार बार पूछते हैं, मां क्या हो गया, क्या हो गया मां, क्या दुख हो गया। फिर सीता जी ने जाकर राम जी के दर्शन किए, अभिवादन किया और फिर सीता जी ने बड़ी भारी प्रतिज्ञा की। उसी समय में ये जमीन से पर्दा हटा, एक सिंहासन आया और सिंहासन के ऊपर पृथ्वी देवी बैठी हुई थी। पृथ्वी देवी उसने कहा कि सीते तुम्हारी लीला पूरी हो गई, मैंने ही तुमको यहां प्रकट किया, अब तुम मेरे ही साथ चले आओ, पृथ्वी में चले आओ। चले गए। फिर राम जी को बहुत वहां वियोग हुआ। उसके बाद वाल्मीकि जी महाराज ने बता दिया ये आप ही के पुत्र हैं। एक बार तो भगवान ने बाण लगाया कि मैं पृथ्वी से सीता को लेकर के आऊंगा। लोगों ने कहा महाराज ऐसा आप करोगे, आप तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, आप पृथ्वी के ऊपर बाण मारोगे तो पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। जब जब पृथ्वी पर संकट आया तो आप ही की शरण में आए और आप ही पृथ्वी को। हाँ बात ठीक है। फिर वहां देवताओं ने फूलों की वर्षा की और वाल्मीकि जी महाराज का बहुत बहुत अभिवादन अभिनंदन किया और फिर भगवान अयोध्या आ गए। ये तो है महर्षि वाल्मीकि जो रामावतार में थे। अब कल विचित्र कथा आएगी। स्वपथ वाल्मीकि जी थी। स्वपथ बहुत नीच कुल में जो पैदा हुए वाल्मीकि जी, उनकी कथा कृष्णावतार की, वो कथा बहुत विचित्र कथा है। जय जय सीता पते रामा, जय जय राधे घनश्याम।